السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما. جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. ہم لوگ اپنے جو جملہ اسمیہ کے اوپر تھے، رائٹ. اچھا، اس میں اصل میں جو ہم نے حروف پڑھے تھے، حروف جارہ، اس سے ریلیٹڈ ایک چیز میں آپ کو بتا کے پھر اس کے بعد ہم اپنے جملہ اسمیہ جہاں ہم نے اسٹاپ کیا تھا وہاں سے ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. جیسے ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے کچھ، اور ان کا ہم نے افیکٹ دیکھا تھا کہ جب بھی حروف جارہ اسم سے پہلے آتے ہیں تو وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں، مجرور کر دیتے ہیں. زیر نہیں کہنا چاہیے بلکہ مجرور کہنا چاہیے، کہ وہ جر دے دیتے ہیں اپنے سے بعد آنے والے اسم کو. تو اس میں جیسے ہم نے پڑھا تھا واؤ قسمیہ، تو واؤ قسمیہ اور جو عام واؤ ہوتا ہے، یعنی جس کا میننگ ہم نارملی اور کرتے ہیں، واؤ عطف اس کو کہا جاتا ہے گرامیٹیکلی، اور کے میننگ میں، یا اینڈ ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اس میں نے آپ کو ڈفرینس یہ بتایا تھا کہ جب بھی واؤ کے بعد آنے والا اسم حالت جر میں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ والا جو واؤ ہے یہ واؤ قسمیہ ہے یا حرف جر والا واؤ ہے. لیکن اگر کوئی واؤ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو زیر نہیں دے رہا، مجرور نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واؤ عطف ہے. جس میں ہمارے پاس مثال ملتی ہے سورۃ رحمان میں، الشمس والقمر، اور اسی طرح والنجم والشجر یسجدان. تو یہ جو ہے اس میں ہمیں آیات میں پتہ چل رہا ہے کہ جو اسم بعد میں آ رہا ہے وہ حالت رفع میں ہے، حالت جر میں نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پر جو واؤ ہے یہ واؤ عطف ہے، حرف جر والا واؤ نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہم نے ایک اور حرف پڑھا تھا لام کا، حروف جارہ میں آتا ہے، اس میں اور ایک اور لام ہے جس میں ڈفرینس ہمیں بالکل سیم اسی طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے پاس لام حرف جر والا ہوگا تو وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دے دے گا. لیکن اگر کوئی لام اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر نہیں دے رہا، مجرور نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لام جارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لام تاکید. یعنی اب آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس دو لام ہیں، ایک لام جارہ ہے. لام جارہ وہ لام ہے جو اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دے گا، اور دوسرا لام جو ایک جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے اس کو لام تاکید بولتے ہیں، اور وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور نہیں کرتا. جیسے اگر ہم ایک نام لیں زید کا، اور لی زیدن لکھیں دال میں کسرہ کے ساتھ، ہم اس کو کریں زیدن، حالت جر میں ہے، تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو لام ہے وہ لام جارہ ہے. لیکن اگر لزیدن ہوگا تو پھر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جو لام ہے یہ لام تاکید ہے. اور اس میں آپ ایک اور ڈفرینس بھی دیکھیں گے کہ جو لام جارہ ہے وہ جب اسم ظاہر کے ساتھ آتا ہے، یہ ٹرم بھی میں نے اس سے پہلے بولی تھی، اسم ظاہر یعنی جب آپ کے پاس نام کوئی آئے گا، اور اسم ضمیر جب آپ کے پاس کوئی ضمائر یوز ہو رہے ہوں گے کسی بھی سینٹینس میں یا عام لفظوں میں، جب ضمائر یوز ہو رہے ہوں گے تو آپ اس کو اسم ضمیر کہیں گے، اور جب کوئی نام ہوگا جیسے زید نام ہے تو وہاں پر آپ اسم ظاہر کہیں گے اسے. تو ہم نے یہ ڈفرینس بھی دیکھا تھا جب ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے کہ جب لام جو لام جارہ ہے وہ جب اسم ظاہر کے ساتھ آتا ہے تو وہ لی ہوتا ہے، یعنی لی زیدن، لیکن جب وہ اسم ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، لہو، لکا. یہ ہم نے اس وقت پورے ٹیبل کے ساتھ میں نے آپ کو ڈفرینس بتایا تھا کہ اس میں جب ہمارے پاس صرف یا متکلم ہوتی ہے وہ لی کے ساتھ، یعنی لام کسرہ کے ساتھ آتا ہے، अदरवाइज जो बाकी सारे दमायर हैं जैसे लहू लहुमा लहुम लहा लहुमा लहुन्न लका, यहाँ पे जितने तमाम दमायर हमारे पास यूज हो रहे हैं उनके साथ जो लामे जा रहा है वो फत्था के साथ होगा। तो यहाँ पे लामे जा रहा जब इस्म जाहिर के साथ है तो वो कसरा के साथ आएगा। तो उसमें हम यानी लामे ताकीद और लामे जारा में हम डिफरेंस बहुत आराम से पहचान सकते हैं जब वो इस्म जाहिर के साथ हो, क्योंकि लामे ताकीद फतहा के साथ होगा और जो लामे है वो कसरा के साथ होगा इस्म जाहिर में। लेकिन जहाँ पर इस्म जमीर की बात होगी वहाँ पे हमें दमायर के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि दमीर अगर तो हमारे पास, क्योंकि इस्म दमीर में जो लामे जा रहा है और लामे ताकीद ये दोनों फतहा के साथ आएंगे, तो इसलिए हमें फिर वहाँ पे लाम के साथ हमने देखना है दमीर कौन सी यूज हुई है। अगर तो हालत जर वाली दमीर यूज हुई है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लाम है वो लामे जा रहा है। लेकिन अगर दमीर हमारे पास हालत रफ वाली यूज हुई है तो फिर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर लाम लामे ताकीद है। तो ये वाली बात आपको समझ आ गई कि लामे जारा और लामे ताकीद में डिफरेंस हम किस तरह से देखेंगे अगर हमें कुरान की आयात में कहीं मिले। इसको मैं और एक्सप्लेन करूँगी अभी एग्जाम्पल से। देखिए इस्म जाहिर में इन चीज़ों को आप लिख लें, फिर जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो इंशाल्लाह आयात के साथ, कि इस्म जाहिर के साथ जब भी लामे जारा आएगा तो वो कसरा के साथ आएगा, और इस्म जाहिर के साथ जब लामे ताकीद आएगा तो लाम के ऊपर फतहा होगी। तो यहाँ पे हम डिफरेंस कर सकते हैं कि जैसे ली जईदन होगा और ली जईदन हरफे जारा है लाम लामे जारा है, और ल जईदन लाम जब फतहा के साथ है तो यहाँ पे आप देखें जईदन हालत रफ में आ रहा है और ला लाम के ऊपर फतहा है, तो इसका मतलब है ये लामे ताकीद है क्योंकि इसने अपने इस बाद आने वाले इस्म को मजरूर नहीं किया। ठीक है, ये हमारी इस्म जाहिर की डेफिनेशन होगी, इस्म जाहिर के साथ लामे जारा और लामे ताकीद का डिफरेंस हो गया। अब अगर हम इस्म जमीर में आए तो इस्म जमीर में हमने जैसे देखा था कि लामे जारा फतहा के साथ होता है लहू लहुमा लहुम, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस किस चीज़ से पता चलेगा, हमें दमीर बताएगी कि अगर तो दमीर हमारे पास हालत जर वाली होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लाम लामे जा रहा है, लेकिन अगर हमारे पास दमीर हालत रफ वाली होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लाम है वो लामे ताकीद है। जैसे आप देखें कि हमारे पास जो हालत जर वाले दमायर हैं वो हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना और याना, ये हमारे पास जो है ना ये दमायर थे हालत नसब और हालत जर वाले। तो यहाँ पर लहू अगर आपको कहीं पे भी मिलेगा, लहुमा, इस टेबल से कोई भी दमीर आपको मिलेगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये लाम लामे जा रहा है। लेकिन अगर आपको हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना और अना नहनु, ये वाले दमायर जब लाम के साथ आएंगे तो फिर आप इस चीज़ को जज करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास चूंकि दमायर हालत रफ वाले हैं इसलिए जो लाम है वो लामे ताकीद है इनके साथ। ठीक है, अब मैं आपको एक आयत लिखती हूँ, उससे फिर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे इन्नल्लाह लहुल गफूरुर रहीम लहुल गफूरुर रहीम। अब यहाँ पे देखें इन्नल्लाह लहुआ, लहुआ में अब हमारे पास दमीर कौन सी यूज हो रही है लाम के साथ, ये वाली हुआ वाली दमीर कौन सी है? हाँ जी, ये लामे ताकीद है एग्जैक्टली। हुआ की दमीर हमारे पास हालत रफ वाली है, और इसलिए यहाँ पे हम जज कर लेते हैं कि ये लामे ताकीद है, क्योंकि अब दमीर हमारे पास हुआ की है। राइट, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग सूरत आदियात ओपन करें, मदीना मुसफ में 599 पेज पे है ये, 30th पारा में 599 पेज है सूरतुल आदिया। सूरह आदियात में लाम की एग्जांपल्स आ रही हैं, इसमें हमें दोनों लाम मिलेंगे, लामे ताकीद भी और लामे जारा भी। ठीक है, सबने ओपन कर ली सूरतुल आदियात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें हम आया नंबर 6 से देखना शुरू करते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिहि लखनूद। यहाँ पे आप देखें लिरब्बिहि, रब्बिहि हमारे पास कौन सा मुरक्कब है, रब्बिहि, हाँ जी ये हमारे पास मुरक्कब इजाफी है। तो यहाँ पे आप देखें कि रब्बुहु नहीं आया बल्कि रब्बिहि आया है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इससे बिफोर में लामे जारा यूज हो रहा है। ली रब्बिहि, रब को किस चीज ने जेर दी है, लामे जारा ने, मजरूर रब को किसने किया है, लामे जारा ने। तो यहाँ पर ये जो ली रब्बिहि में जो ली इस्तेमाल हो रहा है ये हमारे पास लामे जारा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चूंकि ये इस्म जाहिर के साथ यूज हुआ है, रब इस्म जाहिर है, इस्म दमीर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कसरा के साथ यूज हुआ है ली। ठीक है, तो ली रब्बिहि। और लकनूदुन, लकनूदुन में अब आप देखें जो कनूद है, लकनूदुन में जो कनूद है वो हमारे पास हालत रफ में है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लाम है वो क्या है, जी बिल्कुल लामे ताकीद। ये जो कनूद में के साथ जो लाम है ये लामे ताकीद हुआ है, क्योंकि हालत रफ में है, जो लामे जारा होता है वो अपने बाद आने वाले इस्म को मजरूर कर देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आया में देखें, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीदुन। अब यहाँ पे लशहीदुन में लाम कौन सा है, अपने बाद आने वाले इस्म को उसने मजरूर नहीं किया बल्कि वो हालत रफ में है, जी बिल्कुल लामे ताकीद है ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट आया में देखें, व इन्नहु लिशुब्बी, ली हुब्बी में हमारे पास एक लाम आ रहा है जो कि इस्म जाहिर के साथ है, हुब इस्म जाहिर है, इस्म दमीर नहीं है, जी बिल्कुल ये लामे जारा है क्योंकि इसने अपने बाद आने वाले इस्म को मजरूर कर दिया। ठीक है, ली हुब्बिल खैरी लशदीदुन, लशदीदुन में जो लाम है ये कौन सा लाम है, ये लामे ताकीद है। फिर अफला यालमु इज़ा बुअसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौम इज़िन लखबीरुन। लखबीरुन में जो लाम है वो कौन सा है, लामे ताकीद है क्योंकि इसने अपने बाद आने वाले इस्म को हालत जर में नहीं किया बल्कि हालत रफ में है। तो ये जो लामे ताकीद वाले हैं ये जुमले के अंदर एक ताकीद पैदा करते हैं, एक जोर पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास लामे जारा और लामे ताकीद में जो एक डिफरेंस आ रहा है वो हमें समझ आ गया। अगर वो इस्म जाहिर में है तो उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा आसान है, अगर वो इस्म दमीर में है तो टाइम टेकिंग है, मुश्किल नहीं है। आप अगर अपने माइंड में जो टेबल्स हैं, जो गमायत के टेबल्स हैं वो अगर अपने माइंड में रखेंगे और फिर सोच के, तो उसमें फिर आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। जैसे हमारे पास एक आयत आती है, लहा मा कसबत व अलैहा मा कसबत, यहाँ पे हमारे पास आ रही है इस्म बमीर आ रही है और लाम के साथ। अब यहाँ पे देखें लाम जो है वो मफ्तूह होगा, जब हमारे पास इस्म बमीर के साथ लाम आएगा तो लाम लामे जारा और लामे ताकीद की जो जेर जबर है उसमें डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें दमीर के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, लहा मा कसबत, इसमें आप देखें कि जो दमीर है वो कौन सी यूज हुई है लाम के साथ में, हालत रफ वाली है या हालत जर वाली है? लहा, जी बिल्कुल, हालत जर वाली है। तो यहाँ पे जो हमारा लाम है वो लामे जा रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और आया है, व इन दार अल आखिरत लही अल हयवान, व इन दार अल आखिरत लही अल हयवान। यहाँ पे हमारे पास ला लाम इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद हिया की दमीर है। हिया की दमीर कौन सी है, हमारे पास हालत रफ वाली है या हालत जर वाली है? जी बिल्कुल, हालत रफ वाली दमीर है हिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो लाम है वो लामे ताकीद है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमने जुमला इस्मिया पढ़ा था, जिस पे हमने लास्ट टाइम बिल्कुल एंड किया था, उसमें हमारे पास हमने जिस टॉपिक पे एंड किया था वो क्या था कि जुमला इस्मिया में जब हम ताकीद पैदा करना चाहते हैं तो हम इन्ना का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इन्ना का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आने वाला जो मुब्तदा होता है वो जब इस्मु इन्ना बन जाता है तो वो किस हालत में चला जाता है, उसकी हालत कौन सी होती है? हालत नसब वाली होती है, जर वाली होती है या रफ वाली होती है? जब मुब्तदा, हाँ जी, हालत नसब में हो जाती है। अब यहाँ पे आप इस आयत में देखें, वह इन दारुल आखिरता, अद्दारुल आखिरता आखरत का घर, तो यहाँ पे जो हमारे पास मुरक्कब इस्तेमाल हो रहा है अद्दारुल आखिरता, ये कौन सा मुरक्कब है? अद्दार अल आखिरत, ये मुरक्कब इजाफी नहीं है, ये मुरक्कब तौसीफी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मुरक्कब तौसीफी के स्टार्ट में जब इन्ना लगा तो उसने दोनों को, सिफा मौसूफ दोनों को कर दिया, मंसूब कर दिया, ठीक है। इन्ना जब अपने बाद वाला जो इस्म होता है उसको, इस्म इन्ना जब बन जाता है तो वो फिर हालत नसब में चला जाता है। लहिया हमारे पास जो इस्तेमाल हो रहा है वो ताकीद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और अल हयावान जिंदगी को बोलते हैं कि जो आखरत की जिंदगी है असल में वही जिंदगी है। तो यहाँ पर ये जो वही एक जुमले के अंदर ताकीद जोर पैदा हो रहा है वो इस लाम की वजह से पैदा हो रहा है, ठीक है। यहाँ हमारा लामे जारा और लामे ताकीद का डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं, आप उसको जज भी कर सकते हैं। इसमें अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो पूछ ले। अब यहाँ पे देखें, जैसे अद्दार अल आखिरता जो हमने मुरक्कब इजाफी पढ़ा था उसमें हमने क्या चीज़ देखी थी कि जो हमारा मुदौफ इलेह होता है वो हमेशा हालत जर में होता है, और जो मुदौफ की कंडीशन हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? मुदौफ वैसे तो हालत जर में आ सकता है, अगर हालत नसब में भी हो सकता है, हालत जर में भी, हालत रफ में भी, वो उसकी जिस तरह से सेंटेंस के अंदर पोजिशन होगी उसी तरीके से होगा। लेकिन हमने एक और चीज़ ये देखी थी कि वो हल्के एराब के साथ होता है मुदाफ, तो यहाँ पर जो अद्दार है ये मुदाफ की उस कंडीशन के अगेंस्ट में जा रहा है, और अल आखिरता यहाँ पे हमें जो सेकंड वन मिल रहा है वो मफतूह मिल रहा है, हालत नसब में मिल रहा है, तो इसलिए ये मुदाफ इलाय नहीं हो सकता, क्योंकि मुदाफ इलाय की सेंटेंस में चाहे जो मर्जी कंडीशन हो जाए वो अपनी कसरा कभी भी नहीं छोड़ता। जो भी एप्लीकेशन होती है एराब की एप्लीकेशन, वो हमेशा मुदाफ के ऊपर असरअंदाज होती है, ठीक अब यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है जो कि मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ से रिलेटेड है, उसको भी मैं यहाँ डिफाइन कर देती हूँ। जैसे हमने गैर मुंसरिफ अस्मा को पढ़ा था कि वो किसी भी हालत में, हालत जर में भी वो कसरा के साथ नहीं होते। जैसे हमने देखा था जो अम्बिया के नाम है वो बाज़ अम्बिया के नाम गैर मुंसरिफ होते हैं, उसमें हमने इब्राहिम देखा था कि अगर इब्राहिम हालत जर में भी होगा तब भी हम उसको इब्राहिमा पढ़ेंगे। इसी तरह हमने मक्का को देखा था, वो गैर मुंसरिफ इस्म है तो मक्का ता आएगा हमेशा हालत जर में भी। तो इसी से रिलेटेड हमारा ये पॉइंट है कि गैर मुंसरिफ अस्मा के जो गैर मुंसरिफ अस्मा दो ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें वो हालत जर में आ जाते हैं, यानी कसरा कबूल कर लेते हैं, हालत जर में भी कसरा कबूल कर लेते हैं गैर मुंसरिफ अस्मा, और उसकी दो एक्सेप्शन हैं हमारे पास। यानी नॉर्मली जो गैर मुंसरिफ अस्मा है वो हालत जर में भी कसरा कबूल नहीं करते, लेकिन दो एक्सेप्शन हैं इसकी। और वो दो एक्सेप्शन क्या हैं कि जब गैर मुंसरिफ अस्मा के स्टार्ट में अलिफ लाम आ जाता है तब वो हालत जर में आ जाते हैं। ठीक है, पहली एक्सेप्शन ये है कि गैर मुंसरिफ अस्मा के शुरू में जब अलिफ लाम ऐड कर दिया जाए तो वो हालत जर में कसरा कबूल कर लेते हैं। आप इन सेंटेंसेस को एज इट इज लिखें, मैं जब आपको एग्जांपल्स दूंगी तो फिर ये आपको क्लियर हो जाएंगे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि गैर मुंसरिफ इस्म हालत जर में कसरा कबूल कर लेता है जब उसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए। ठीक, और दूसरा इसका एक्सेप्शन क्या है कि जब गैर मुंसरिफ इस्म किसी सेंटेंस में अगर वो मुदाफ हो और मुदाफ इले हो, यानी एक जुमले के अंदर उसकी दोनों कंडीशंस बन रही हैं, दोनों हालतों में वो आ रहा है, मुदाफ भी है और मुदाफ इले भी है, तब वो कसरा कबूल कर लेता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि गैर मुंसरिफ इस्म के शुरू में अगर अलिफ लाम आ जाए तो वो हालत जर में आ जाता है, हालत जर में कसरा कबूल कर लेता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर किसी इस्म की हालत एक जुमले के अंदर मुदाफ भी है और मुदाफ इलेही भी है तो फिर वो कसरा कबूल कर लेगा हालत जर में, गैर मुंसरिफ इस्म। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे हमारे पास एक इस्म है मसाजिद जो कि गैर मुंसरिफ है, यानी ये गैर मुंसरिफ इस्म है, और गैर मुंसरिफ इस्म का जो हमने आम कायदा पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि वो कसरा हालत जर में कसरा कबूल नहीं करते, वो मसाजिदा ही आएगा जहां पर भी आएगा। तो अगर हम इसका सिंपल मुरक्कब बनाए, मुरक्कब तो वो कैसे होगा, अल्लाह की मसाजिद हमारे पास मुरक्कब इजाफी है, यहाँ पे हम मसाजिदुल्लाही मसाजिदुल्लाही, यहाँ पे हमारे पास जो मसाजिद है वो मदमूम आ रहा है, हालत रफ में आ रहा है क्योंकि वो मुदाफ है और मुदाफ पे अगर कोई चीज असरअंदाज ना हो तो वो हालत रफ में ही होते हैं। ठीक, फिर इसी तरह अगर हम एक और तरकीब बनाए कुछ मसाजिद के दरवाजे, यहाँ पे आप देखें कि जो कुछ है वो इस जुमले में मसाजिद को नकिरा फॉर्म में लेकर आ रहा है, क्योंकि तो हमने देखा था कुछ और कोई की वजह से जो तरकीब है वो नकिरा में चली जाती है। कुछ मसाजिद के दरवाजे, ये भी हमारे पास मुरक्कब इजाफी है। अब यहाँ पर हमारे जो दरवाजे हैं वो मुदाफ है, अबवाबू, हाँ जी अबवाबू मसाजिदी, मसाजिदा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मुदौफ इले आ रहा है, मसाजिदा मुदौफ इले है, लेकिन इसने हालत अपनी हालत क्यों नहीं चेंज की, यानी हालत जर में भी मजरूर होने के बावजूद ये फतहा के साथ क्यों आ रहा है, इसलिए क्योंकि ये मुनसरिफ इस्म है, अबवाबु मसाजिदा, ठीक है। और एक्सेप्शन हमने क्या देखी है कि या तो अलिफ लाम होना चाहिए, जो गैर मुनसरिफ अस्माएं हैं उनके साथ अलिफ लाम होना चाहिए, और या वो सेंटेंस में मुदौफ और मुदौफ इले दोनों की हालत में आ रहे हो। तो अब इसी मुरक्कब को अगर हम मसाजिद के दरवाजे कर देंगे, यानी मारफा कंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे मसाजिद की, तो अबवाबुल मसाजिदी हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट की आप लोगों को समझ आ गई? अबवाबुल मसाजिदी कि यहां पे हमने अबवाबु मसाजिदा फतहा के साथ क्यों किया है और अबवाबुल मसाजिदी कसरा के साथ क्यों है, इस पॉइंट की समझ आ गई? ये हमारी फर्स्ट एक्सेप्ट फर्स्ट जो हमने पॉइंट पढ़ा है कि अलिफ लाम के साथ हमारा अगर गैर मुनसरिफ इस्म आ जाएगा तो वो हालत जर में कसरा को कबूल कर लेगा, ठीक है। अल मसाजिदी क्यों हमारे पास कसरा में आया है, हालत जर में भी कसरा उसने कबूल किया है, इसलिए क्योंकि वो गैर मुनसरिफ इस्म के शुरू में जब अलिफ लाम आ जाता है तो वो कसरा को कबूल कर लेता है। यहाँ पे यहाँ तक हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, कि अबवाबु मसाजिदा क्योंकि अलिफ लाम नहीं है गैर मुनसरिफ इस्म के शुरू में, इसलिए वो हालत जर में फतहा के साथ आया है, और अबवाबुल मसाजिदी गैर मुनसरिफ इस्म हमारे पास अलिफ लाम के साथ आ रहा है, इसलिए उसने कसरा को कबूल कर लिया, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि अगर किसी जुमले के अंदर मुदौफ और मुदौफ इले के तौर पर एक लफ्ज आए और वो लफ्ज गैर मुनसरिफ हो तो वो कसरा को कबूल कर लेगा, हालत जर में कसरा को कबूल कर लेगा। इसमें अब आप देखें अल्लाह की मसाजिद के दरवाजे, अल्लाह की मसाजिद के दरवाजे, यहाँ पे जो हमारे पास मसाजिद है वो मुदौफ और मुदौफ इले दोनों की हालत में आ रहा है। ये हमारे पास जो तरकीब है हालत मुरकब इजाफी है और पेचीदा मुरकब इजाफी है, ये कैसे बनेगा, अबवाबु मसाजिदी मसाजिदिल्लाही, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो मसाजिदी है वो हालत जर में है, और ये हालत जर में क्यों है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस तरकीब के अंदर मसाजिद मुदौफ भी है और मुदौफ इले भी है, अबवाबु मसाजिदी मुदौफ मुदौफ इले, मसाजिदिल्लाही में मसाजिद जो है वो मुदौफ है और अल्लाह ही मुदौफ इले है। तो यहाँ पर चूंकि मसाजिद मुदौफ भी है और मुदौफ इले भी है, इसलिए इसने यहाँ पर हालत जर में कसरा को कबूल कर लिया है बावजूद इसके कि वो गैर मुनसरिफ इस्म है। यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, ओके। जो सेकंड पॉइंट है इसमें थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक ये हो गई कि मैंने मुदौफ और मुदौफ इले दोनों बोल दिए, तो असल में ये पॉइंट ऐसे है कि अगर किसी भी सेंटेंस में मुदौफ मुदौफ आएगा, गैर मुनसरिफ इस्म मुदौफ आएगा और उसके ऊपर कोई ऐसा कोई कि वो हालत जर में जाए तो फिर वो हालत जर में चला जाएगा, राइट। इसमें जैसे अबवाबु मसाजिदी में मसाजिद इल्लाही की वजह से यहाँ पर मुदाफ की सूरत में मसाजिद आ रहा है, और अबवाबु मसाजिदी मुदाफ इलेह की होने की वजह से इसने कसरा कबूल किया। यानी मुदाफ के ऊपर अगर कोई ऐसी हालत अप्लाई हो रही है कि वो कसरा कबूल करे, तो फिर गैर मुंसरिफ किस्म कसरा कबूल करेगा, जैसे अबवाबु मसाजिद इल्लाही। और इसी तरीके से मसाजिद इल्लाही के स्टार्ट में अगर हम कोई हर्फ जार को ऐड कर दें, जैसे फी मसाजिद इल्लाही, फी मसाजिद इल्लाही, तो अब यहाँ पे मसाजिद ने, फी मसाजिद इल्लाही में मसाजिद ने क्यों कसरा कबूल की? इसलिए क्योंकि ये मुदाफ है, लेकिन इसके ऊपर इस जुमले में, इस तरकीब में कोई ऐसी चीज़ असर अंदाज हो रही है जिसकी वजह से उसने इसको कसरा दे दी। यहाँ पर मुदाफ भी है और हरफ जार भी उससे बिफोर आ रहा है मुदाफ से, तो इस वजह से यहाँ पर जो मुदाफ है मसाजिद है वो गैर मुंसरफ भी है और हालत जर में भी है। सेकेंड पॉइंट की आप लोगों को समझ आई कि अगर कोई गैर मुंसरफ इस्म मुदाफ होता है और उसके ऊपर कोई ऐसी वजह बनती है, यानी मुदाफ है, एक गैर मुंसरफ इस्म मुदाफ की सूरत में आ रहा है और उसके ऊपर उसके एक कोई ऐसा आमिल असरअंदाज हो रहा है, कोई ऐसा उसके ऊपर जुमले में, पिछले जुमले में कोई एक ऐसी चीज, कोई ऐसा लफ्ज जिसने उसको हालत जर में जाने के लिए कहा है, तो वो हालत जर में चला जाएगा। अगर किसी को ये सेकंड पॉइंट नहीं समझ आया तो मुझे बता दें, मुझे लग रहा है शायद ये थोड़ा सा ना समझ आया हो। असल में पॉइंट डिफिकल्ट नहीं है, मैं समझाने में थोड़ी डिफिकल्टी पैदा कर ली है। ओके, मैं दोबारा बताती हूँ कि अगर कोई गैर मुंसरफ इस्म मुदाफ है और मुदाफ होने के साथ साथ उसके ऊपर कोई ऐसा आमिल असरअंदाज हो रहा है जो उस मुदाफ को हालत जर में जाने के लिए कह रहा है, तो वो कसरा कबूल कर लेता है। जी बिल्कुल, ये सारे गैर मुंसरिफ असमा के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन पॉइंट की शराइत दो हैं। एक, सबसे पहले कि वो मुदाफ होना चाहिए, गैर मुंसरिफ इस्म मुदाफ की हालत में होना चाहिए, और प्लस क्या कि उसके ऊपर कोई ऐसा आमिल असरअंदाज हो रहा है जुमले में जो कि उसको हालत जर में जाने के लिए फोर्स कर रहा है। जैसे अगर हम अबवाबु मसाजिदी में देखें तो यहाँ पर मुदाफ इलेह होने की वजह से मसाजिद को फोर्स किया जा रहा है कि तुम हालत जर में जाओ, और वो हालत जर में क्यों चला गया? क्योंकि वो मुदाफ भी है, यानी दोनों कंडीशंस यहाँ पर पूरी हो रही हैं। और फी मसाजिद इल्लाही में मसाजिद मुदाफ की सूरत में आ रहा है, गैर मुंसरफ होने के साथ साथ वो मुदाफ भी है, और उसके ऊपर फी उसको फोर्स कर रहा है, फी हर्फ जार, कि तुम अब हालत जर में चले जाओ, तो इस वजह से वो हालत जर में चला गया। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं जो कि एट अ टाइम इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर हालत जर में चला गया। नहीं, ये मुदाफ इलेह नहीं होगा। ये जो शुरू में मैंने आपको मुदाफ और मुदाफ इलेह का बताया था, उसको आप करेक्ट कर लें कि सिर्फ मुदाफ होना उसके लिए जरूरी है। गैर मुंसरिफ इस्म मुदाफ होगा और फिर उसको सेंटेंस में कोई ऐसा आमिल है जो उस मुदाफ को कह रहा है कि तुम अब हालत जर में चले जाओ, तो फिर गैर मुंसरिफ इस्म कसरा कबूल कर लेगा। बस यहाँ पे इसने जर इसलिए कबूल की है क्योंकि ये गैर मुंसरिफ इस्म के साथ साथ मुदाफ भी है, और फिर उसके ऊपर इस सेंटेंस में कोई ऐसा आमिल इसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है जो कि इसको हालत जर में जाने के लिए कह रहा है। तो यानी ये जो तीन चार चीजें एक कंडीशन के अंदर आ रही हैं, वो जब सब पूरी होंगी तो फिर गैर मुंसरिफ इस्म हालत जर में चला जाएगा।
ठीक है।
हम आज अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे। तो अगर किसी ने इस पॉइंट में कोई, ये जो दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, लामे जारा और लामे ताकीद, और इसके साथ साथ गैर मुंसरिक का, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछें।
वो
हाँ, कॉम्प्लिकेटेड मुरक्कब इजाफी में भी ये रूल हो सकता है। असल में आप इसको मुरक्कब इजाफी के साथ सिर्फ महदूद ना करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको जो दूसरी मिसाल दी है फी मसाजिदिल्लाही, यहाँ पर हमारे पास जो मुरक्कब इजाफी है वो पेचीदा नहीं है, वो एक सिंपल मुरक्कब इजाफी है मसाजिदिल्लाही। लेकिन यहाँ पर मसाजिद गैर मुनसरिफ है और मुदाफ है, लेकिन उससे पीछे हमारे पास हर्फ जार आ रहा है जिसने मसाजिद को हालत जर में कसरा कबूल करने के ऊपर मजबूर कर दिया। तो यानी जो पूरा पॉइंट है वो आप अपने माइंड में रखें, वो पेचीदा मुरक्कब इजाफी भी हो सकता है और वो सिंपल मुरक्कब इजाफी भी हो सकता है, अगर उससे पहले उसको कोई भी ऐसी कंडीशन मिल रही है जिसमें वो हालत जर में चला जाए। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته